नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बेहतर भविष्य के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग का किया आह्वान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, चुनावी वायदों से आगे बढ़कर सरकार ने किया काम। 3 साल के कार्यकाल में राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं। प्रदेश सरकार का आत्मनिर्भर हिमाचल जनसंकल्प सम्मेलन मंडी के पड्डल मैदान में कल, तैयारियां जोरों पर। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप, जमीनी हकीकत को नजरअंदाज करते हुए मंडी में आयोजित किए जाने वाले जश्न पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है राज्य सरकार। और प्रदेश में शुष्क ठंड का दौर जारी, मौसम विभाग ने 12 दिसंबर को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी व बारिश होने का लगाया अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए एशिया में माइक्रोसॉफ्ट के अब तक के सबसे बड़े निवेश का स्वागत किया है। माइक्रोसॉफ्ट प्रमुख और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्या नडेला के सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरा विश्व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत की क्षमता पर भरोसा करता है। उन्होंने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा एशिया में अब तक के सबसे बड़े निवेश के लिए भारत का चयन करने पर उन्हें अत्यधिक प्रसन्नता है। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि देश के युवा इस अवसर का पूरा लाभ उठाएंगे और बेहतर भविष्य के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने चुनावी वायदों से आगे बढ़कर काम किया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि सरकार ने 6 गारंटियां पूरी कर ली हैं और शेष गारंटियों को जल्द पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते दिन 3 साल के कार्यकाल में राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को 2027 में आत्मनिर्भर और 2032 तक देश का समृद्ध राज्य बनाने की दिशा में सरकार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर कुछ कड़े फैसले लिए गए हैं जिनके भविष्य में सकारात्मक परिणाम आएंगे। प्रदेश सरकार द्वारा मंडी के पड्डल मैदान में कल आयोजित होने वाले जनसंकल्प सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर है। मंडी में इस सम्मेलन की तैयारियों का जायजा लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि ये सम्मेलन प्रदेश की नीतियों, उपलब्धियों और विकास की दिशा को जनता के सामने प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण अवसर है। हमारे मंडी जिला संवाददाता ने बताया कि जनसंकल्प रैली को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है।
मंडी में कांग्रेस की जनसंकल्प रैली को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कल 11 दिसंबर को मंडी के पड्डल मैदान में विशाल जनसभा आयोजित की जा रही है। इस रैली में प्रदेश भर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में आम लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री सहित सरकार के सभी मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार भी मंडी पहुंचे और उन्होंने पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और रैली को ऐतिहासिक बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आपदा के कठिन समय में सरकार की तत्परता और राहत कार्यों का जनता के सामने रखा जाएगा। खासकर मंडी जैसे सबसे अधिक प्रभावित जिलों में सरकार के कामों को प्रमुखता से बताया जाएगा। सत्ताधारी कांग्रेस के लिए यह रैली ताकत दिखाने के साथ साथ आगामी राजनीतिक रणनीति का भी अहम संकेत माना जा रहा है। आकाशवाणी समाचारों से मंडी से मैं मुनीश सूद।
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार जमीनी हकीकत को नजरअंदाज करते हुए मंडी में आयोजित किए जाने वाले जश्न पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। मंडी से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि आपदा के 5 महीने बीत जाने के बाद भी सराज क्षेत्र की 15 पंचायतों के लोगों को आज भी पीठ पर सामान लादकर दुर्गम गांवों तक पहुंचना पड़ रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री को मंडी रैली में अपनी उन गारंटियों पर भी जनता के बीच अपनी बात रखनी चाहिए जिनके सहारे कांग्रेस ने सत्ता हासिल की है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आपदा को लेकर गंभीर नहीं है। मंडी लोकसभा क्षेत्र से सांसद कंगना रणौत ने कहा है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार के लिए जानी जाती है। संसद के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि एक राजनीतिक परिवार से होने के बावजूद कांग्रेस ने हमेशा देश के संविधान की अवहेलना की है।
इसकी सरकार जो है वो अपनी करप्शन के लिए जानी जाती है और पर कितने ही घोटालों के, जैसे कि आप हेरल केस को भी जानते हैं, घोटालों के इनपे केसेस है, करप्शन के इनपे चार्जेस है और नैतिकता में भी ये लोग कितने चूक गए हैं कि इन्होंने नागरिकता हुए के बिना वोट डाला। तो कांग्रेस जो पार्टी है, आप ये सोच सकते हैं कि एक पॉलिटिकल परिवार से आने के बावजूद ये हमेशा कानूनों का और नियमों का उल्लंघन करते रहे और ना कि ये संविधान का ही हमेशा अपमान करते हैं, यहाँ के नियमों का, यहाँ के लोगों का, यहाँ की परंपराओं का हमेशा इन्होंने डिसरिगार्ड किया है।
ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज पर लॉग इन कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद। IFS अधिकारी संजय सूद को प्रधान मुख्य वन अरण्यपाल नियुक्त किया गया है। इस संबंध में मुख्य सचिव संजय गुप्ता की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। संजय सूद वन निगम के प्रबंध निदेशक और जाइका के मुख्य परियोजना निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार भी संभालेंगे। हिमाचल पथ परिवहन निगम चालक परिचालक यूनियन ने प्रदेश सरकार से वेतन व लंबित वित्तीय लाभ जल्द जारी करने की मांग की है। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में यूनियन के अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने कहा कि यदि सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना तो 24 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी।
आरटीसी में हर महीने हमें नारे लगाकर या सड़कों पर उतरकर सैलरी मांगनी पड़ती। इस महीने भी अभी तक सैलरी नहीं आई, पेंशन की तो बात छोड़। बड़े दुख के साथ कहना चाहूंगा कि इन्होंने ये प्रथा बना ली कि जब जब बात आती है सैलरी और हमारे पेंशन और ड्यूज की बात तो आरटीसी घाटे में। मैं सरकार और प्रबंधन को चेता देना चाहता हूं कि आरटीसी का टोटल कर्मचारी बासर बॉय से लेके सीजीएम तक दिन रात मेहनत कर रहा है। हमें तो हमारा मेहनत आना चाहिए, इन्होंने हमें भिखारी बनाकर रख दिया।
राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अन्य भागों में शुष्क ठंड का दौर बदस्तूर जारी है। लाहौल स्पीति जिले की ऊंची चोटियों पर हुई हल्की बर्फबारी और प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में छा रहे घने कोहरे ने ठंड में और इजाफा किया है। इस बीच मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 12 दिसंबर को राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी व बारिश होने का अनुमान लगाया है। इधर बर्फबारी की चाह में पर्यटन स्थलों में पर्यटक उमड़ने शुरू हो गए हैं। कुल्लू से हमारे संवाददाता ने बताया कि बड़ी संख्या में सैलानी पर्यटन स्थलों का रुख कर रहे हैं।
देश भर से सैलानी जिला के विभिन्न पर्यटक स्थलों का रुख कर रहे हैं तथा मनाली मणिकर्ण कसोल तीर्थन घाटी बजीवी सहित अन्य पर्यटक स्थलों पर सैलानियों की संख्या में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। क्रिसमस और नववर्ष पर पर्यटन कारोबार और भी चमकने की उम्मीद है। इन दिनों मनाली में होटल ऑक्यूपेंसी 60% तक पहुंच रही है जबकि आने वाले दिनों में इसमें और भी इजाफा होने की उम्मीद है। हालांकि पर्यटकों को अभी भी बर्फबारी का इंतजार है तथा बर्फबारी होते ही देश भर से पर्यटक यहां पहुंचेंगे। वहीं कुल्लू मनाली घूमने आ रहे पर्यटक यहां चल रही विभिन्न साहसिक गतिविधियों में भाग ले रहे हैं तथा रिवर राफ्टिंग, रॉक क्लाइंबिंग, पैराग्लाइडिंग व अन्य गतिविधियों का भरपूर आनंद ले रहे हैं। आकाशवाणी के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा।
और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने मुख्यमंत्री के बयान को प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, पात्रों को मिलेगी 300 यूनिट मुफ्त बिजली, तीन चरणों में देंगे महिलाओं को 1500 रुपए। दिव्य हिमाचल के शब्द है, 3 साल में व्यवस्था बदली, गारंटियां भी पूरी करेंगे। पंजाब केसरी की एक खबर है, एचआरटीसी कर्मचारियों व पेंशनर्स के लिए 60 करोड़ की ग्रांट जारी, मुख्यमंत्री ने जारी किए आदेश, कर्मचारियों को जारी करें वेतन। दैनिक जागरण व हिमाचल दस्तक की एक जैसी सुर्खी है, जिंदा गाय को नोचने के मामले में प्रदेश सरकार ने बैठाई जांच। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बेहतर भविष्य के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग का किया आह्वान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, चुनावी वायदों से आगे बढ़कर सरकार ने किया काम, 3 साल के कार्यकाल में राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं। प्रदेश सरकार का आत्मनिर्भर हिमाचल जन संकल्प सम्मेलन मंडी के पड्डल मैदान में कल, तैयारियां जोरों पर। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप, जमीनी हकीकत को नजरअंदाज करते हुए मंडी में आयोजित किए जाने वाले जश्न पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है राज्य सरकार। और प्रदेश में शुष्क ठंड का दौर जारी, मौसम विभाग ने 12 दिसंबर को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी व बारिश होने का लगाया अनुमान। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।